ओम शांति। कौन कौन आप में से अपने योग से संतुष्ट हैं? हाथ उठाओ जरा। वाह, बहुत अच्छी बात। जो आधे संतुष्ट हैं, आधे हैं, आधे नहीं, उठाओ, कोई बात नहीं। आज योग पे चर्चा करेंगे। लज्जा की क्या बात है। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर आत्मा ज्यादा सफल नहीं होती, मन भटकता है। घर की परिस्थितियां, शरीर की बीमारियां, बच्चों की परेशानियां मन को विचलित कर देती हैं। इसलिए कभी योग अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। लेकिन हमें अपना योग बहुत अच्छा लगाना है, क्योंकि योग में सबसे ज्यादा सुख है। है या नहीं? योग केवल भविष्य के लिए नहीं, या केवल विकर्म विनाश करने के लिए नहीं, योग बहुत बड़ा सुख है। भगवान के साथ रहने का सुख है योग। है या नहीं? सबको ये सुख मिल रहा है? इस सुख को चखना है जीवन में बहुत। यही वो सुख है जो स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है, क्योंकि स्वर्ग में जो सुख होंगे वो सब स्थूल होंगे ना। सब कुछ अच्छा होगा बाहर से, बाकी परमात्म मिलन का सुख वो केवल अब है। तो एक प्रश्न है, उस पर सभी अच्छा चिंतन करेंगे, सब सोचेंगे, केवल मैं सुना दूं वो नहीं। कौन बन सकते हैं योगी? प्रश्न है, कौन बन सकते हैं श्रेष्ठ योगी? कौन? नहीं, निरंतर याद किसे रहेगी? बोलो बोलो। जो व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, एक ही चीज रहेगी, व्यर्थ या बाबा की याद, व्यर्थ या समर्थ। क्योंकि योगयुक्त जीवन तब तक नहीं बनता जब तक मन में श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद न हो। अगर मन व्यर्थ में है तो देखो, एक सूक्ष्म गति सभी अपने ख्याल में रखेंगे। मन में अगर व्यर्थ संकल्प हैं, तो बुद्धि की शक्ति नष्ट होती रहती है। और बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। अगर बुद्धि की शक्ति नष्ट होती है, तीसरा नेत्र डल हो जाता है, तो योग युक्त नहीं रह सकते। और आगे सोचे, माताएं बताएं, कौन बन सकते हैं योगी? जो व्यर्थ पूरा हो गया, अब आगे चलो, जो परचिंतन से मुक्त रहे। साथ में दूसरा भी अच्छा शब्द है, परचिंतन और परदर्शन, दोनों मिल गए ना। दुनिया में इन शब्दों को कोई जानता नहीं। बाबा ने ये सब हमें सिखाया। इन दोनों से मुक्त रहने वाले योगी बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों को देखने में बिजी रहते हैं तो बाबा नहीं दिखाई देगा। हम अपने को नहीं देख पाएंगे। हम दूसरों को देखने में ही अपनी सारी शक्तियां नष्ट कर देंगे। और परचिंतन क्या नुकसान करेगा? पतन की जड़ तो है ही। नुकसान क्या करेगा योग में? योग में बैठेंगे तो क्या होगा? वही सब बातें याद आएंगी। कितनी भी कोशिश करे कोई, वही सब बातें याद आएंगी ना। और तीसरी बात, योगी वो बन सकते हैं जो, एक बड़ी स्थूल बात बाबा कहा करते हैं, देखने में वो स्थूल है नहीं, जो बातों में रहते हैं वो योगी नहीं बन सकते। चाहे बातें होंगी, चाहे बाप, ये शब्द बाबा के। एक ही होगा, बातें या बाप। हमें पूछना है अपने से, हमें क्या चाहिए, बातें या बाप। और बातें कैसी होती हैं, कैसी होती है बातें, सुखदाई या कष्टदाई। चार लोग बैठ के बात कर रहे, कभी कभी तो बात करते करते लड़ने ही लगेंगे। कोई पूछे क्यों लड़ रहे हो, ये उन्हें पता नहीं। कोई बात शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। इसलिए हमें बाबा की याद का सुख चाहिए तो बातों को छोड़ देना पड़ेगा। फिर याद दिला दें आपको, मैं हर बार याद दिलाऊंगा आपको बाबा का वो महावाक्य, हमारा एक एक सेकंड मूल्यवान है और एक एक संकल्प महान है। पक्का कर दो माताओं, बोलो हमारा एक एक संकल्प महान है। तो बातों में रहेंगे तो दोनों ही गए ना, टाइम भी वेस्ट, संकल्प भी महान रहेंगे नहीं, बातों वाले ही चलेंगे। हद की स्थिति आ जाती है, छोटी स्थिति आ जाती है मनुष्य की, जो मनुष्य बातों में बहुत रहते हैं। बैठा हो भी ऊपर बैठा लो, एक नीचे बैठ जाओ कोई, हाँ थोड़े आगे हो जाओ, बीच की जगह भर लो, थोड़े आगे और आगे चलो। अब सूक्ष्मता की ओर, योग का सुख किसे मिलेगा, मैंने इसलिए सुख शब्द बोला है, आपको उत्तर देना इजी होगा। योग का सुख किसे मिलेगा है, जो दूसरों को सुख दें, और सुख से जोड़ो जो सांसारिक सुखों से ऊपर उठ गए हों। सांसारिक सुख अच्छी चीज है, ये नहीं कि सांसारिक सुख हमें उपयोग नहीं करने चाहिए, वो अच्छी चीज है। पर कोई उसमें लिप्त हो गया हो, खाना पीना रहना सहना सांसारिकता, तो जितनी लौकिकता रहेगी उतना योग नष्ट होता रहेगा। त्याग से क्या संबंध है योग का, मैंने उत्तर ही दे दिया है, नहीं योग का संकल्प चिंतन करो। हाँ बोल रहे, ठीक बोल रहे, जितना त्याग उतनी ही तपस्या, जितना त्याग उतनी ही तपस्या। त्याग किस चीज का, हाँ त्याग की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है ना। देखो आप सब अगर त्याग न करते तो यहाँ सेवा में आते आ सकता है कोई, माताएं भी कहेंगे हमारे घर में बहुत काम है, आपके बच्चे या पति या और सब भी कहेंगे काम कौन करेगा। माताओं की बात मैं कर रहा हूँ, भाई तो छुट्टी लेके आ सकते हैं, घर का काम माताओं को करना होता है ना। तो हरेक को लगता है ना हमारा घर में रहना जरूरी है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की परीक्षा हो रही है, कई बातें हैं। मार्च में हमारे पास माताएं नहीं आती, हम पूछते हैं क्यों, कि बच्चों की परीक्षाएं हैं। तो भाई उसमें तुम्हें क्या करना है, परीक्षा बच्चों को देनी है, परेशान तुम क्यों होता है या नहीं, टेंशन माताओं को, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, काम तो वही होगा ना, कोई खास थोड़ा ही होगा, बच्चों को वैसे ही भोजन खिलाना है और तो कुछ काम नहीं। लेकिन माताओं को रहता है बच्चों की परीक्षा, हमें यहाँ रहना चाहिए। लेकिन आप सब त्याग कराए ना, त्याग किया तो सेवा का भाग्य मिला। वैसे ही त्याग वृत्ति, जिस चीज को योगी बनने के लिए त्यागना जरूरी हो उसको फट से त्याग कर दें। मान लो हमें लग रहा है, एक उदाहरण मोटा सा, कि रात को थोड़ा ज्यादा भोजन खाने से सवेरे उठा नहीं जाता, तो योगी क्या करेंगे, कम खाएंगे या और ज्यादा खाएंगे, कम खाएंगे ना। छोटा सा त्याग, छोटा सा त्याग, भोजन देर से खाने से सवेरे उठने में दिक्कत हो रही है तो जल्दी खाएंगे ना, अपना इंतजाम करेंगे, कुछ भी घरों में माताओं को कई समस्याएं होती हैं, पहले पति खाए फिर हम खाएंगे, माताओं की ये समस्या है। अब पति रात को खा रहा है 12 बजे आके, तो माता जी को 12:30 खाना पड़ रहा है, फिर सवेरे आंख नहीं खुल रही है, होगा ना, देर से सोएंगे तो आंख कैसे खुलेगी। तो कुछ इसमें अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, त्याग, कुछ त्याग आवश्यक है। देखो अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आपको 8 बजे ही भोजन करना है, आपको 6 बजे भोजन करना है, तो माताएं सोचेंगी कि पति पहले खाए फिर हम खाएंगे, या कह देंगी नहीं डॉक्टर ने कहा है हमें पहले खा लेना आप पीछे खा लेना, होगा समझौता या नहीं, इसको भी त्याग कहेंगे ना। जिस चीज की जरूरत हो योगी बनने में, कोई बहुत बोलते हैं तो योग कम हो जाता है, तो बोलने का थोड़ा त्याग करके अंतर्मुखी होना पड़ेगा ना। कर्मेंद्रियों के रस आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो योगी नहीं बन सकते। बिल्कुल सीधी सी बात, कर्मेंद्रियों के रसों में जो आत्मा लगी हुई है वो योगी नहीं बन सकती। सब कर्मेंद्रियों का रस, चाहे खाने पीने का रस कर्मेंद्रियों का रस है ना, चाहे आंखों से टीवी देखने का रस, वो भी बहुत बुरा रस है, ऐसा लग जाता है कईयों को कि खाते हुए भी टीवी देखेंगे। एक की समस्या थी बहुत, परिवार सारा ज्ञान में, वो भाई जो सबसे बड़ा उनका बाप, उसकी टीवी से बहुत लगाव, खाना खाए तो भी टीवी देखे, सोने से पहले टीवी देखते देखते ही सोएगा। उसे सब कहते कि खाना तो बाबा की याद में खा लो, कि मैं दोनों काम कर सकता हूँ, बाबा को याद भी करूंगा टीवी भी देखूंगा, बहाना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन उनके घर में हाल बहुत बिगड़ा, फिर उसका भी बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि ज्यादा टीवी देखने से एक तो आंखें खराब होंगी, खराब वेव जाती हैं, उसकी हेल्थ बिगड़ी, क्योंकि वो कम से कम 8-10 घंटे रोज टीवी के आगे होता था, बिल्कुल हालत बिगड़ी, शायद मृत्यु हो गई, अब तो दिखता नहीं है, छोटी आयु, बड़ी आयु नहीं थी, बहुत 60 से पहले पहले बच्चे हैं उसके नीचे, यहाँ के रहे शांतिवन में, सब कुछ छोड़ के यहाँ आए शांतिवन में कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन टीवी के व्यसन ने उन्हें कुछ नहीं करने दिया, आखिर मृत्यु हुई। तो ये रस है ना मनुष्य को, क्या आ रहा टीवी में, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, मैं टीवी रखता नहीं था, अभी एक मुफ्त में मिल गई तो मेरे कमरे में भी आ गई, मैं कभी कभी खोल के देखता हूँ तो 10 मिनट में बोर हो जाता हूँ, क्या इसको देखें, वही वही आ रहा है, वही वही आ रहा है, कुछ भी तो नहीं है। अभी अपना आ गया पीस ऑफ माइंड, तो मैं सवेरे खोलता हूँ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सवेरे से चालू हो जाता है, बाबा के चित्र आ रहे, गीत आ रहे, योग की कमेंट्री आ रही है, कभी दादी जान की कुछ बोल रही है, कभी मुरली की पॉइंट सुनाई जा रही है। तो ये जो कर्मेंद्रियों के रस हैं, खान पान का रस किसी को लग जाए तो क्या होगा, सारा दिन कोई किचन में ही रहने लगे, सेवा के लिए नहीं, अपने लिए, अपने घर में ये चीज बहुत अच्छी है, आज ये खाएंगे, आज ये बनाएंगे, लक्ष्य होगा बच्चों को खिलाएंगे, किसी का लक्ष्य होगा बाबा को खिलाएंगे अच्छी अच्छी बात चीजें, पर वास्तव में क्या होगा लक्ष्य। तो ये कर्मेंद्रियों के रस आत्मा को बाबा के रस से दूर ले चलते हैं। एक सूक्ष्म बात पर आप ध्यान देंगे, कौन बन सकते हैं योगी, बाबा अपनी मुरलियों में एक बहुत अच्छी बात सदा कहते हैं, उसको आप सब जानते हैं, बेगर टू प्रिंस, जो बेगर बनेंगे वास्तव में वही योगी बनते हैं। बाबा के दूसरे शब्द हैं, साकार मुरलियां हैं, राज योगी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी चीज, मेरा कुछ भी नहीं, सबसे गहरी बात है। मुझे एक बात याद आ रही, कहानी याद आ रही, कभी कभी आत्माएं क्या है कि बहुत बड़ा त्याग करके बाबा के पास आती हैं, कोई कोई बहुत बड़ा त्याग करके समर्पित भी होती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं सच्ची, बिना नाम लिए, आप उन्हें जानते भी नहीं इसलिए कहानी सुनाने में हर्जा नहीं। कोई एक माता बाबा के समय समर्पित हुई अपने चार बच्चों को छोड़कर, छोटे ही बच्चे थे, ये भी छोटी आयु की थी, 30 साल से कम कम, बहुत बड़ा त्याग माना गया उसका, ज्ञान में थे, उसके पति भी ज्ञान में था। इसने इच्छा की, पढ़ी लिखी थी कि मैं सेवा करूं बाबा की, उन दिनों पढ़े लिखे बाबा के पास हैंड्स नहीं होते थे, तो चार बच्चों को, छोटे बच्चे आप सोच लो 10 साल से छोटे, उनको छोड़ के ये समर्पित हुई, बहुत बड़ा त्याग हुआ ना। माँ कोई अपने छोटे बच्चों को त्याग करके और सेवा में लग जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी मानी जाएगी। आज भी हैं वो, बुजुर्ग हो गई, लेकिन उनके जीवन में कोई रौनक नहीं आई, रौनक नहीं आई। कारण क्या कि अपने त्याग को स्वयं वैल्यू नहीं दी। त्याग को वैल्यू देना माना त्याग करने के बाद हमें कुछ पाना है, त्याग के बाद हमारा जीवन साधारण बनकर न बीतने लगे। कुमार बैठे हैं बहुत सारे, हाथ उठाना कुमार, सारे ही हैं लगभग, कुमारों का त्याग बहुत बड़ा है ना, है या नहीं? आप समर्पित हुए नहीं हुए इसका महत्व नहीं, आपका त्याग बहुत बड़ा है। माताएं समझती हैं त्याग है कुमारों का भी, ये सोचते हैं कुमारों का क्या त्याग, मौज कर रहे सब, हम्म? कुमारों का भी बहुत बड़ा त्याग है, त्याग में ही तो मौज है ना, मौज वही कर रहा है जो त्यागी है, बाकी तो सब परेशान हो रहे हैं ना। तो देखो आप सबका त्याग, शायद आपको अपने त्याग का महसूसता नहीं है। विकारों को छोड़ना, संसार की राहों को छोड़ देना, जिन राहों पर संसार के सभी युवक चल रहे हैं वहां से अलग मार्ग पर आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा त्याग है। अपने त्याग को स्वयं महत्व दें। त्याग किया है तो बाबा से सब कुछ पाएंगे ही, त्याग किया है तो जीवन साधारण रूप में न बीतता रहे। ये नहीं बस सेवा की, खाना खाया, घूमे फिरे, पूरा हो गया, महानता जीवन में हमारा जीवन आदर्श हो जाए, जो हमारे जीवन को देखकर बहुतों की सेवा हो, वैल्यू हो जाएगी ना। हमारा जीवन साधारणता में बीत रहा हो, उससे त्याग का महत्व तो नहीं रहा। ठीक है, माताएं समझ रही है, कई माताओं में आपने आप में से कष्ट पाया होगा बहुत जीवन में, ज्ञान में आए कितना सुना होगा, सुना होगा या नहीं, धारणाओं को अपनाने के लिए डंडे भी खाए होंगे, गाली भी खाई होगी, क्रोध भी सहन किया होगा, किया है ना, सब करते हैं। बाबा जब साकार में थे ना, तो एक बात मोटे रूप से प्रचलित थी कि भाई कोई माता ज्ञान में आई, उसके घर में शांति है या झगड़ा हो रहा है, क्या होता, क्या होगा, झगड़ा शुरू। तो झगड़ा हुआ, माना बाबा समझते थे माता ठीक धारणाओं पे चल रही है, और झगड़ा नहीं हुआ तो कहा ठीक धारणाओं पे नहीं चल रही है। तो ये झगड़े हमें पावरफुल बनाते हैं ना, शक्तिशाली बनाते हैं। तो माताओं ने भी त्याग किया है, हमारा त्याग निष्फल न जाए, हमारा त्याग साधारण बनकर न रह जाए। त्याग किया है तो जीवन में त्याग का तेज हो, सभी विचार करें, कुमार बहुत बैठे हैं, अपने से बात करेंगे। त्याग किया है तो महान बनना है, पसंद है, ठीक है। और महानताएं हैं योगयुक्त जीवन, अपने अंदर ऐसे सद्गुण कि हमें देखकर ही दूसरे लोग गुणवान बनने की प्रेरणा लेते रहें, बाबा कहा करते थे कि मधुबन में हम लोगों को कहते थे, तुम लोग ऐसे ऐसा जीवन बनाओ आने वाले सभी लोग महसूस करें कि यज्ञ में भी बहुत बड़ा कार्य चल रहा है ना, कैसे सब सहज भाव से काम कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे टेंशन नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही काम चल रहा है ना, सहज चल रहा है ना, सब देखते हैं बड़ा बड़ा कार्य सहज भाव से चल रहा है, सब आनंदित हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं, इससे गुणों का दान होता है, सभी लोग समझ लेते हैं ये कर सकते हैं तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, तो गुणवान बनने की प्रेरणा दूसरों को मिल जाती है। और आगे चलो, योगी वही बन सकते हैं, त्याग से जुड़ी हुई बात है, अटेंशन देंगे आप इस बात पर, ये जरा सूक्ष्म है, शास्त्रों से भी शास्त्रों में भी आई है ये बात, सभी धर्मों के सन्यासियों में भी ये बात आई है। क्या? हाँ, वैराग्य के साथ इसको दूसरा रूप दिया है, संग्रह वृत्ति न हो। इस पर बहुत कम ध्यान होता है पुरुषार्थियों का। देखो, हमारे पास बहुत साधन हो तो आप महसूस करेंगे हमारी बुद्धि भारी है, दबाव है, किसी चीज का दबाव है, और हमारे पास कुछ न हो, मान लो हमारे पास पहनने के कपड़े और बस थोड़ा बहुत जो यूज का सामान वो है, तो आप देखेंगे बुद्धि बिल्कुल हल्की है। संग्रह वृत्ति, इसको वहां शब्द दिया गया है, संस्कृत का शब्द है अपरिग्रह, 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 संग्रह वृत्ति नहीं। साधन बहुत सारे होंगे, बुद्धि योग टूटता रहेगा, चाहे उनमें जाए या ना जाए, ये जरूरी नहीं हम उनमें उलझे हुए हों, लेकिन हमारे पास बहुत सारे साधनों का होना हमारे बुद्धि योग को डाउन करेगा, इसलिए बिल्कुल मेरा कुछ नहीं, जो ऐसे बेगर बन गए वही प्रिंस बनते हैं, योगी बनते हैं। तो हम सभी को अपना जीवन योग युक्त बनाना है। आप सभी एक सिंपल सा प्लान बना ले योग का। मैं आपको एक चिंतन की बात दे रहा हूँ, ये काम आपको स्वयं करना है। सभी कुमार जो सेवाओं में हैं, यहीं से ये अभ्यास अगर आप चालू कर देंगे तो योग युक्त जीवन बनाना बहुत सहज हो जाएगा। क्या? अपनी दिनचर्या में जितने जितने कर्म हैं उनकी एक लिस्ट लिख लो, और इस क्रम में ये अभ्यास, इस क्रम में ये अभ्यास, इस क्रम में ये अभ्यास फिक्स कर दो। इसको बाबा कहते हैं मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। सुनिए ना ये बाबा की बात, मूल्यों में आई है ये, कि योगी जीवन बनाना है, योग का चार्ट बढ़ाना है, तो अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, चार्ट। बाबा उदाहरण देते आए, जैसे बड़े बड़े लोग मिनिस्टर शादी होते हैं ना, हमारे यहाँ भी गवर्नर आता है तो उनका पूरे दिन का, अगर वो चार घंटे रहना है तो चार घंटे का ही पूरा प्रोग्राम सेट होगा, 15-15 मिनट का, 10-10 मिनट का, इसको कहते हैं उनका टाइम टेबल। हम मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाएंगे। मान लो हम बुरुस कर रहे हैं, अब बुरुस करना एक सिंपल काम है, रोज सब करते हैं, कोई दो बार भी करते हैं, अगर हम एक संकल्प रख लें कि जब हम बुरुस करेंगे तो हम संकल्प करेंगे मैं एक महान आत्मा हूं, तो कितना अच्छा हो जाएगा, सहज। स्नान करना है, बाबा ने एक संकल्प दिया हुआ, स्नान करते हुए संकल्प करो ये देह मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें कौन हूं, इष्ट देवी इष्ट देव हूं, तीन बार याद कर लो बस इसको, देखो कितना अच्छा अनुभव रहता है। रास्ते में जा रहे हैं, संकल्प कर लो मैं लाइट हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट फैल रही है, सकाश फैल रही है, बहुत अच्छी फीलिंग हो जाएगी। मुरली सुन रहे हैं, अभ्यास कर लो भगवान मुझसे बातें कर रहा है। इस फीलिंग से सुनो आप, देखो कितना रस आता है। बहुत अच्छी बात लगी होगी बाबा की अभी अभी की आपको। मैं किन की महफिल में नहीं आता, याद है ना? मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता जहाँ 36 प्रकार के भोजन मिले। मैं गरीबों की महफिल में आता हूँ जिनको रोटी भी नहीं मिलती। लगा प्यारा बाबा, कितनी अच्छी बात, प्यार है ना उसका। यज्ञ में वैगरी पाठ चला, खाने को नहीं मिला ना, ऐसी महफिल में भगवान आया, गरीबों के घर मेहमान बनकर आया है। कितनी प्यारी बात कही। मेरा मन उस दिन सारा दिन मगन रहा, जब याद करता हूँ मगन हो जाता है कि ये है भगवान। मनुष्य किस महफिल में जाएगा जहाँ 36 प्रकार के भोजन मिले, जहाँ अच्छा सब कुछ हो। और भगवान वहाँ आया जहाँ उसे कोई नहीं जानता, उसको आके भी खुद बताना पड़ा कि मैं हूँ तुम्हारा बाप, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, याद दिलाना पड़ा ना, मैं वही हूँ, याद दिलाया। कईयों को लगा बाबा ऐसे ही बोल रहा है, और जो उसके सच्चे बच्चे थे उन्होंने उसे पहचान लिया, सचमुच यही है वो जिसे हम पाना चाहते थे। तो ऐसे सुंदर विचार जिनके मन में होंगे उनका जीवन योग युक्त होता जाएगा। ऐसे विचार क्या करते हैं, हमारे मन को बाबा के प्यार में मगन करते हैं। मगन होते हैं ना जब ऐसी बात हम सुनते हैं कि बाबा हम सबको कितना प्यार करता है। हमें पता नहीं चलता, कई माताएं सोचती होंगी हम तो गरीब हैं, बाबा हमारी ओर तो देखता भी नहीं होगा। सोचती है कोई माता ऐसा, बाबा तो पैसे वालों का है, स्टेज पर भी वो जाते हैं जिनके पास पैसा है, रिबन भी पैसे से मिलती है। माताएं सोचती होंगी बाबा हमें कहाँ बाबा देखेगा, और भगवान क्या कह रहा है, मैं आता ही गरीबों की महफिल में हूँ। पैसे से उसको तो नहीं खरीदा जा सकता ना, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो बरसात करा देता है ना, हीरे रत्नों की भारत में बरसात हो जाएगी ना, धरती भरपूर हो जाएगी। बाबा कहा करते हैं ना, इतने होंगे पड़े होंगे बिखरे होंगे तू उन्हें मकानों में जड़ लोगे। देखो ह्यूमन नेचर है ना, मनुष्य की आदत है ना, जो चीज है उसको वो यूज करता है। अब ऑस्ट्रेलिया में जाओ, लकड़ी बहुत होती है वहां क्योंकि जंगल ही जंगल है, आबादी जो है सागर के किनारे किनारे है, बीच का जो हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का वो जंगल है, पहाड़ छोटे छोटे जंगल पेड़, तो लकड़ी लकड़ी है, तो वहां लकड़ी के मकान बनते हैं, अधिक चीजें लकड़ी की मिलेंगी आपके। कारपेंटर जो है वो बड़े साहूकार है, उनका धंधा बड़ा जबरदस्त है वहां, कारपेंटर्स को छोटा आदमी नहीं माना जाता वहां, बड़ा भारी मकान ही वो बनाते हैं। तो जब हीरे और सोना होगा तो मकान किसका बनाएंगे, उनका ही बनाएंगे, क्योंकि और कुछ मिलेगा ही नहीं ना, लकड़ी चीरने वाले कारपेंटर होंगे नहीं तब, तो उन्हीं को जड़ेंगे। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, एक चीज का उत्तर मेरे पास नहीं है, आप सब विचार कर ले कि भाई जो हीरे हैं आज देखो उन्हें कितना घिस के तैयार करना पड़ता है ना मशीनों पर, तो क्या सतयुग में भी ऐसा करेंगे क्या, हैं? या अभी का घिसा हुआ काम, ये भी उत्तर तो ठीक है आपका। अब बहुत घिस रहे, देखो सूरत में आप जाओ, बॉम्बे में जाओ, इधर गुजरात के इस हिस्से में महाराष्ट्र के हिस्से में हीरो का धंधा और वो भी हीरो की चक्कियां, हीरो की फैक्ट्री अथाओ है। मुझे भी ले गए थे, अपने कई भाई भी वहां काम करते हैं, तो मुझे भी दिखाए। मैंने कहा हीरा तो दिखाओ, बड़ा हीरा कहते हैं, तो सबसे बड़ा हीरा दिखाया, वो भी सबसे छोटा था। कहा इसकी कीमत 4 करोड़ है, एक भाई जो कीमत फिक्स करता है हीरो की, अपना बीके है, कुमार है, उसको ये योग्यता प्राप्त है कि वो हीरो की कीमत निश्चित करेगा, वही चलेगा बाजार में। तो कहा ये 4 करोड़ का हीरा है, एक छोटा सा था, जो चने का दाना होता है ना, उसका भी आधा। मैं सोचने लगा इतना है हीरा 4 करोड़ का, तो सतयुग में कितने करोड़ों के मालिक हैं आप सब माताएं, सोचो। साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे ना, कपड़ों में जड़े होंगे हीरे, ताज तो छोड़ो, कपड़ों पे भी होंगे ना हीरे, सोना सब जड़ा होगा। तो बाबा तो सोने हीरो की बरसात करा देता है ना, उसके लिए पैसों की क्या वैल्यू, कागज है ना उसके लिए। तो भगवान गरीबों की महफिल में आता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, जितने मन में सुंदर विचार होंगे उतना ही योग अच्छा होगा। एक एक सुंदर विचार अनेक व्यर्थ विचारों को समाप्त करने वाला होता है। ये बात हमें वैसे भी जाननी चाहिए, 1,000,000 व्यर्थ संकल्प इस होल में फैला दिए गए हों, और एक पावरफुल संकल्प फैलाया जाए तो एक पावरफुल संकल्प की शक्ति लाखों नेगेटिव संकल्पों की वाइब्रेशंस को नष्ट कर देगी। जैसे अगरबत्ती जलाते ही सुगंध फैलने लगती है ना, दुर्गंध हटने लगती है। तो हमारा एक एक संकल्प हमारे मन को ऐसा शक्तिशाली बना देता है, हम योग युक्त हो सकते हैं। और सोचो, लास्ट बात करेंगे अब इसकी, योगी वो बन सकते हैं जिनके पास पवित्रता की बहुत शक्ति हो। केवल यहां बाबा को याद करना नहीं है, कई लोग पूछ लेते हैं कि भगवान को याद करने के लिए पवित्रता की क्या जरूरत पड़ गई, तो सभी याद करते, भक्ति में कितने लोग याद कर रहे हैं उसे, जो सबसे ज्यादा पापी है वो और ज्यादा याद करते रहते हैं, तो उसमें पवित्रता की कहां जरूरत पड़ गई। लेकिन परमात्म प्यार बिना पवित्रता के नहीं होता, जो परम पवित्र है उसका आकर्षण बिना पवित्रता के नहीं होता, न वो हमारी ओर आकर्षित होगा न हम उसकी ओर आकर्षित होंगे। ये पवित्रता ही बीच में चुंबकीय शक्ति है जो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। बाबा के लिए प्रेम भी पैदा नहीं होगा बिना पवित्रता के। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझाने के लिए भी आपको काम आएगी, पवित्रता की शक्ति से ही ब्रेन शक्तिशाली बनता है, दिमाग मस्तिष्क, तब मनुष्य अच्छा योग कर सकता है। अगर किसी का ब्रेन शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, तो उससे योग लगेगा नहीं। सब जानते हैं कभी सिर में दर्द हो रहा हो योग लगता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि योग भारी कर देगा, योग सिर दर्द को बढ़ा देगा और लगेगा नहीं। खींचातान करें मुश्किल हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगी। पवित्रता हमारे चित्त को, ब्रेन को रिलैक्स करती है, शक्तिशाली बनाती है, तो हमारा योग उतना ही अच्छा होता जाता है। पवित्रता में सब कुछ आ जाता है, पांचों विकार, उसके बाल बच्चे, सब विकारों के बाल बच्चे भी है ना, छोटे छोटे विकार, उन सब पर हमारी विजय होती रहे, उन सब का हमें पता हो, ये हमें छोड़ते चलना है, तो हमारा योग उतना ही अच्छा होगा। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। आज के वरदान में शायद था नेचुरल कैलेमिटीज कब होंगी, हाँ, जब हमारी नेच ये चीजें जो है ना, हमारी अव्यक्त स्थिति का था ना, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों को समाप्त करने वाले अव्यक्त अव्यक्त स्थिति से संपन्न भाव। तो अव्यक्त स्थिति की आदत जब नेचुरल नेचर हो जाएगी तब एक तो अदालत में जाने से बचेंगे। कौन सी अदालत? धर्मराज की अदालत। और नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। बाबा ऐसे ही पवित्रता के लिए कहते हैं, जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटीज माना माताओं ने तो नहीं समझा होगा, हमने तो बोल दिया, बाबा ने बोल दिया। नेचुरल कैलेमिटीज माना नहीं माताओं को पता, इसलिए ध्यान से सुन रही हैं। कुछ कुछ कहा तो जा रहा है, क्या कहा जा रहा है पता नहीं। क्या नेचुरल कैलेमिटीज माताओं? प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप। नेचुरल कैलेमिटीज माना प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूचाल, धरती हिलना। तो ये सब हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर आधारित होगा। तो पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी। साथ में हम ध्यान दें, एक बात और मुझे याद आ गई, वो बहुत प्रैक्टिकल है और ये करना है सभी को। योग युक्त होने के लिए बुद्धि को स्वच्छ करना है, क्लीन। दो शब्द बाबा बोला करते हैं इंग्लिश के, बुद्धि कैसी हो? क्लीन। और मन की लाइन क्लियर। मन में संकल्प उठते रहते हैं ना, तो लाइन क्लियर नहीं होती। मन की लाइन क्लियर, बुद्धि क्लीन। क्लीन माना स्वच्छ, क्लियर माना कोई बीच में बाधा ना हो। तो हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। देखो, हम सबके पास सबसे सुंदर जो शक्ति है वो है बुद्धि, जिसमें और सारी शक्ति समाती हैं। बुद्धि हमारी विवेक शक्ति, बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति, बुद्धि हमारी धारणा शक्ति। जो कुछ हम धारण करते हैं वो किसमें आता है? बुद्धि में। विवेक ज्ञान किसमें समाता है? बुद्धि में। तो बुद्धि विवेक शक्ति, धारणा शक्ति, निर्णय शक्ति और साथ में तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र अगर स्वच्छ नहीं होगा तो देखेगा कैसे? हमारे पांचों स्वरूप किससे हम देखते हैं? बुद्धि के नेत्र से। सत्ययुग का हमारा पहला जन्म हम किससे देखते हैं? बुद्धि के नेत्र से। तो इस बुद्धि को जितना स्वच्छ करेंगे तो यही हमारे मस्तिष्क में ही, हमारी बुद्धि में ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, नूंधा हुआ है। तो सतयुग में हम क्या थे वो भी इधर ही है, हमारे ब्रेन में ही है। बुद्धि स्वच्छ होगी तो वो साफ साफ दिखाई देगा। इसको बाबा कभी कहा करते हैं, तुम अपने आदि के संस्कारों को कैच कर सकोगे, पकड़ सकोगे, देख सकोगे। तो बुद्धि को स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है। एक कहानी सुनाते हैं ना, अब आखिर में वो कहानी सुना देता हूँ। एक माता बहुत अशांत रहती थी, बाहर की कहानी है। उसके घर में एक साधु आया, उसने उसको अपना प्रश्न दिया कि मुझे बहुत अशांति रहती है, मेरा चित्त शांत नहीं रहता है, मुझे शांति चाहिए, आप कोई रास्ता बताओ। ठीक है, बताएंगे। अगले दिन माताजी ने साधु को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया था। अगले दिन साधु जी भोजन करने आ गए और कमंडल में आधे में गोबर भर के ले आए। माताजी ने कहा भोजन के लिए आइए, तो उसने कहा सब मेरे कमंडल में डाल दो। उसने कमंडल लिया, कहा इसमें तो गोबर भरा है, कैसे इसमें डालूंगी, मैंने खीर बनाई है, आलू है, पूरी है, इसमें कैसे डाल दूं मैं, तो खराब हो जाएगा। तो उत्तर देना था ना, कि तुम्हें शांति इसलिए नहीं है कि तुमने अपनी बुद्धि के कमंडल में गंदगी बहुत भर ली है, माल जमा किया है, तो इसको निकालो। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसमें ही खीर डाल दो तो तुम पहले इसे साफ करके धोओगी ना, सुगंधित करोगी अच्छी तरह बिल्कुल, फिर खीर डालोगी ना। तुम भी अपनी बुद्धि में जो बहुत सारी गंदगी भर ली है उसको निकालो, सफाई करो, चित्त शांत हो जाएगा। ये शिक्षा देनी थी, फिर तो भोजन किया उसने। तो हम सब भी ये ध्यान रखें, हमें अपनी बुद्धि में बाबा को समाना है, तो और क्या समाया हुआ है पहले ही, तो बाबा के लिए तो जगह ही नहीं होगी ना। हम दूसरों को समझाते हैं ना, तुम कहते हो सबके दिलों में भगवान बैठा है, पहले चेक तो करो तुम्हारे दिल में क्या क्या बैठा है। जहाँ गंदगी बैठी हो, जहाँ विकार बैठे हो, वहाँ भगवान बैठेगा। सहज सी बात है, सब लोग जानते हैं इस बात को, भक्त भी जानते हैं, शास्त्र वाले भी जानते हैं। जिस दिल में गंदगी बैठी हो, ईर्ष्या द्वेष हो, विकार हो, अहंकार हो, वहाँ भला प्रभु का वास कैसे हो सकता है। ये तो सब जगह लिखा है, रामायण में भी लिखा है, तो महाभारत में भी, वेदों में भी, तो दर्शनों में भी, उपनिषदों में भी, सब में है यही बात। तो हम भी बाबा को अगर अपने चित्त में बैठाना चाहते हैं तो सफाई कर दें। आती है माताओं को सफाई करने? घर की सफाई करनी तो आती है, कपड़ों की सफाई करनी भी आती है, लेकिन अंदर की सफाई सूक्ष्म चीज है ना, और कुछ नहीं। हम अपनी बुद्धि को समझा दें, देखो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, करके देखना, ध्यान से सुन लेना है, लास्ट बात ध्यान से, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, ठीक है ना। अपनी बुद्धि से बात करो, हे मेरी बुद्धि तुम दिव्य बुद्धि हो। आज से केवल अच्छी बातें ग्रहण करना, बुरी बातों को रिजेक्ट कर देना, ग्रहण न करना, बाहर फेंक देना, तो आप देखेंगे कोई बुरी बात आती है, कोई आपको बुराई सुना रहा है, आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, लेगी नहीं, नहीं, आपको तुरंत याद आ जाएगा नो, ये मेरे मतलब की चीज नहीं, बाहर, मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। तो बुद्धि को ऑर्डर देंगे, हम मालिक हैं ना बुद्धि के, पसंद है, बुद्धि के हम मालिक हैं, इसे ऑर्डर दे दो, कोई गंदगी तुमको स्वीकार नहीं करनी है, और जो पहले से भरी उसको साफ कर दो, तो बुद्धि स्वयं ही उसको साफ कर डालेगी। बहुत अच्छा अनुभव होगा ये। साथ में जोड़ दूं, सवेरे जब मुरली सुनने जाओ तो मुरली से पहले योग करना और बुद्धि को आदेश देना, मेरी बुद्धि जो भगवान के महावाक्य आज सुनो उन्हें साथ साथ धारण कर लेना, देखना कितने अच्छे अनुभव होते हैं। रोज करना, ओम शांति।